नंबर एक, सांसारिकता, वर्ल्डिनेस, भारतीय विशेष रूप से हिंदू दर्शन कार्य के सिद्धांत पर आधारित है। यह विश्वास किया जाता है कि सभी समस्याएं पिछले जन्म के कामों के कारण उत्पन्न हुई हैं, जबकि पश्चिम की मूल्यों की प्रणाली भौतिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व देती है। उपभोक्तावाद की यह इच्छा भारतीय समाज के सभी वर्गों, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से विशेषता बनती जा रही है। आधुनिक साजो सामान का मालिक होना प्रतिष्ठित का प्रतीकात्मक समझा जाता है, चाहे उनकी कोई उपयोगिता ना हो। दूसरे शब्दों में, वस्तुएं उनकी उपयोगिता की खातिर नहीं बल्कि प्रतिष्ठा के प्रदर्शन के लिए खरीदी जाती हैं। इससे पश्चिमी मूल्यों के प्रभाव का पता चलता है। नंबर दो, पारंपरिक संस्कृति का दुर्बल होना, वीकनिंग ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। ब्रिटिश शासन के आरंभिक दौर में सहिष्णुता, सामान्यवाद तथा आत्म आलोचना की परंपराएं सामने आई। राम मोहन रॉय हिंदुवाद के कट्टर आलोचक थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन सरकार को यह आग्रह करने में पहल की कि सती प्रथा का उन्मूलन किया जाए तथा अंग्रेजी में आधुनिक शिक्षा देने के लिए स्कूल खोले जाएं। उन्होंने वास्तव में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज खोले जाने का विरोध भी किया था। राम मोहन रॉय जीवन भर हिंदू समाज में पुरातनपंथी तत्वों के विरुद्ध लड़ते रहे। उन्होंने हिंदू समाज की कई कुरीतियों की निंदा की। भारतीय उच्च वर्ग की आधुनिक शिक्षा तथा उपयोगितावाद व बुद्धिवाद के मूल्यों ने उन्हें अपनी ही संस्कृति की कड़ी आलोचना करने के लिए प्रेरित किया। वे हमारी पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करने लगे। पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों को नई आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला गया। व्यक्तिवाद व भौतिकवाद के मूल्यों को महत्व दिया जाने लगा। नंबर तीन, सामाजिक स्तरीकरण का परिवर्तन, चेंजिंग ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। पारंपरिक भारतीय समाज एक बंद प्रणाली थी जिसमें व्यक्ति की स्थिति जन्म से ही निर्धारित की जाती थी। जाति प्रणाली ने व्यक्तियों व सामाजिक समूहों को ऊंच नीच में बांट दिया। जातियों से न केवल नाम, पद, स्थिति व व्यवसाय दिया गया बल्कि रीति रिवाज, परंपराएं, जीवन शैली की निर्धारित की गई जो प्रत्येक जाति की भिन्न भिन्न होती थी। इस प्रणाली में ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान मिला। उन्हें ईश्वर व मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता था, अतः उन्हें अधिक प्रतिष्ठा मिली। समाज के रक्षक अर्थात क्षत्रियों को उनके बाद का स्थान मिला। उनके पास सभी सामाजिक व राजनीतिक शक्तियां थीं। वैश्यों का तीसरा स्थान था तथा वे समाज के आर्थिक मामलों को देखते थे। जाति प्रथा के ऊंच नीच में शूद्रों को सबसे निचला स्थान दिया गया। उनकी मुख्य भूमिका तीनों ऊंची जातियों की सेवा करना था। व्यवसाय का चयन करने की बात ही नहीं थी, व्यवसायत आरोपित किए जाते थे। यहाँ तक कि कुछ जातियों के नाम से पता चलता था कि इसके सदस्य कौन सा व्यवसाय करते हैं। एक जाति से दूसरी जाति में जाने की अनुमति नहीं थी। पेज नंबर 156। पश्चिमी मूल्यों के प्रभाव के कारण पारंपरिक मूल्यों की जगह बुद्धिवाद, विषय निष्ठता तथा तर्क ने ले ली। आधुनिक समाज में व्यक्ति का स्थान प्राप्त की गई योग्यताओं के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसका अर्थ है व्यक्ति की शिक्षा क्या है और वह कौन सा कार्य कर रहा है, उसकी आय, जीवन शैली क्या है आदि। आधुनिक समाज में पद प्राप्त किए जाते हैं, पद सोपान के नियमों में परिवर्तन हुआ है। समूची सामंतशाही प्रणाली ने जातिवाद की पदोपान विशेषता को सशक्त किया था। आधुनिक युग में इसमें परिवर्तन हुआ है। आधुनिक युग विशेषज्ञता का युग है। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को व्यावसायिक स्थान मिलता है। व्यावसायिक अवसरों के कारण युवा पीढ़ी अपनी जाति के पारंपरिक व्यवसायों को नहीं अपनाती। विभिन्न जातियों के सदस्य एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा आपस में मिलने की जातिगत पाबंदियां अब क्रियात्मक एवं संभव नहीं है। परिवहन के साधन सभी सदस्यों के लिए हैं। इसी प्रकार सहभोज पर लगी पाबंदियां भी हटा ली गई हैं। नंबर 4, सामान्य जागृति पैदा करना, क्रिएटिंग जनरल अवेयरनेस। छापे खाने के आविष्कार से शिक्षा के जगत में संस्कृत साहित्य, कानून तथा दर्शन का अंग्रेजी में अनुवाद देखने को मिला। पश्चिमी और पश्चिमी देशों से प्रेरित विद्वानों के शोध कार्यों ने भारतीय सभ्यता की नई तथा विषय भारतीय सभ्यता की नई तथा विषयनिष्ठ परिप्रेक्ष्यों को उपलब्ध कराया। राष्ट्रीय चेतना के साथ ही क्षेत्रीयवाद, सांप्रदायिकता तथा जातिवाद आया है, जिसने उभर रहे भारत के लिए गंभीर समस्याएं पैदा की हैं और की जा रही हैं। नंबर 5, कानूनों में परिवर्तन, चेंज इन लेजिस्लेशंस। ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली के लागू होने से समानता के सिद्धांत तथा सकारात्मक अधिकारों के लिए चेतना स्थापित हुई। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए कई कानून लागू किए। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी के पूर्वाध में प्रायः जागरूक भारतीय परामर्श के साथ सती प्रथा, शिक्षा कन्या की हत्या, मानव बलि, दास प्रथा तथा बाल विवाह जैसी संस्थाएं समाप्त कर दी। इसी प्रकार फैक्ट्री और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कानून बनाए गए। नंबर 6, औद्योगिकीकरण व शहरीकरण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में आधुनिक मशीनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना ने देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने तथा सामाजिक शक्तियों को अस्तित्व मिलाने में सहायता की है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहन दिया है। भारत में परिवहन और संचार के आधुनिक साधनों के विकास ने देश के इतिहास में प्रगतिशील भूमिका निभाई है। इन्होंने भारतीय लोगों को सामाजिक रूप से संगठित करने के लिए सुदृढ़ शक्ति के रूप में कार्य किया। इन्होंने उस दूरी को समाप्त कर दिया जिसने विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को विभाजित कर रखा था। इससे राष्ट्रीय आधार पर व्यापक चेतना और सहयोग के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी ओर इसने पारंपरिक प्रणाली को छिन्न भिन्न कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग नौकरी की तलाश में शहरी क्षेत्रों में चले गए। हाल के वर्षों में व्यक्तिवाद की भावना के बढ़ने से, जो पश्चिमी जगत की विशेषता है, से परिवार की सामंजस्यता प्रभावित हुई है। लोगों को जहां जाकर वे बसते हैं उस जगह से कोई लगाव नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की गतिशीलता बढ़ गई है। पारिवारिक संबंध कमजोर हो गए हैं, नातेदारियां अपनी विशेष शक्ति खो चुकी हैं तथा स्थिति मूल्यांकन की प्रणाली में प्राप्त किए गए स्थान पारंपरिक रूप से आरोपित स्थानों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पेज नंबर 157। नंबर 7, शिक्षा का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई आधुनिक शिक्षा ने भारतीय लोगों को पश्चिमी लेखकों द्वारा प्रतिपादित किए गए स्वतंत्रता के सिद्धांतों का अध्ययन करने व उन्हें आत्मसात करने में सहायता की। ब्रिटिश शासन में नई शिक्षा के प्रसार ने भारत में एक नई सामाजिक श्रेणी को जन्म दिया, जिससे आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय लोगों को आधुनिक राष्ट्र में संगठित किया तथा कई प्रगतिशील सामाजिक सुधार एवं धार्मिक सुधार के आंदोलन सुनियोजित किए। वे सभी राजनीतिक राष्ट्रीय आंदोलनों के पथ प्रदर्शक, आयोजक तथा नेता थे। उन्होंने शिक्षा और प्रचार के द्वारा, जिसमें बहुत आत्म बलिदान और कष्ट शामिल थे, भारतीय लोगों के विश्वास वर्ग में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के विचार आरोपित किए। पश्चिमीकरण से न केवल नई संस्थाओं जैसे कि समाचार पत्रों, चुनाव, ईसाई मिशनरियों ने जन्म लिया, बल्कि पुरानी संस्थाओं में मूलभूत परिवर्तन भी हुआ है। अतः बल्कि भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व भी स्कूल होते थे, परंतु वे केवल उच्च जाति के बच्चों तक ही सीमित थे तथा अधिकतर पारंपरिक ज्ञान का ही प्रसार करते थे। सेना, नागरिक सेवाएं तथा न्यायालयों जैसी अन्य संस्थाएं भी इसी प्रकार प्रभावित हुईं। पश्चिमीकरण का यह अर्थ नहीं है कि हर एक चीज पश्चिमी से अपनाई गई। कुछ तत्व पश्चिमी से लाए गए बल्कि अन्यों को रद्द कर दिया गया तथा पश्चिमी से लिए गए कई तत्वों का भारत में रूपांतरण हुआ है। जबकि ब्रिटिश संस्कृति और जीवन शैली के कुछ तत्व सभी भारतीय को आकर्षक लगे, वहां ब्रिटिश संस्कृति के कुछ पहलू भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों को विशेष रूप से आकर्षक लगे। अतः हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण ने परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में पुरानी संस्थाओं में परिवर्तन किया है तथा नई संस्थाएं दी हैं। पश्चिमीकरण से मानवतावाद के मूल्य भी मिले हैं, जो जाति, आर्थिक स्थिति, धर्म, आयु, लिंग में भेदभाव किए बिना सभी के कल्याण पर बल देते हैं।